ओम शांति। आज तो बहुत ही सुंदर दिन है प्रभु मिलन का, और इस प्रभु मिलन का जो हम सम्मुख में आनंद उठाएंगे, प्रभु मिलन करेंगे, आनंद तो उठाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा कैसे उठाएं, ये बातें बताने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी। करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, और आज से करीब 27 साल पहले कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, कोटा यूनिवर्सिटी, वहां से आपने अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद 2 साल बाद ही आप ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत हो गए, और करीब 10 साल तक आपने वहां अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद 10 साल के बाद अर्थात सन 2000 में आपको सौभाग्य मिला, पूर्व में जो हमारी दादी प्रकाशमणि जी इस संस्था के मुख्य प्रशासिका थे, उनके पर्सनल डॉक्टर के रूप में सदा उनके अंग संग रहने का आपको बहुत बड़ा अवसर मिला, तो वो भी आपके पास बहुत अनुभवों की खान है। और साथ साथ चूंकि आप डॉक्टर हैं, राजयोग का टीचर हैं, तो डॉक्टर नॉलेज भी और राजयोग का नॉलेज भी दोनों को मिक्स करके कैसे प्रैक्टिकल जीवन में जो तनाव आते हैं, चिंताएं आती है, और भी बीमारियां, कैसे उसको राजयोग से दूर कर सकते हैं, ऐसे बहुत अनुभव के साथ आप सबके सामने बातें रखते हैं, जिसे अनेकों अनेक भाई लाभान्वित होते हैं। खास करके आप भ्रमण करते रहते हैं देश विदेश में बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए, और यहाँ पर भी जितने भी हमारे सेमिनार्स होते हैं, शिविर होते हैं, रिट्रीट्स होती हैं, आप सब में आपका योगदान रहता है। और इसके अलावा हमारे पास जो विमेंस विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न हमारे आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी हम सबको बताएंगे कि बाप दादा से सन्मुख मिलन का हम आनंद कैसे उठाएं। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप में से पहली बार बाबा से मिलन मनाने कौन आए हैं? अच्छा, काफी हैं। तो बाबा से मिलना हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो बहुत ही विशेष अनुभव होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने भगवान को काफी ढूंढा था। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ढूंढ रहे थे, लेकिन जन्मों से पहले भी ढूंढा था, और कहीं भगवान की एक झलक मिल जाए, कहीं वो थोड़ा सा उसका दर्शन हो जाए, या हमें उसके चरणों की धूल भी मिल जाए। भक्त तो इतनी नम्रता से भगवान को किसी भी रूप में देखने को तैयार होते हैं, तो वो खोजते खोजते अब जब साक्षात बाबा आज हमारे सामने हमें पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में और गुरु के रूप में मिलते हैं, तो हमारे लिए वो खुशी और नशा हम वर्णन नहीं कर सकते। तो आज हमारे लिए वही दिन है जिसके लिए कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो 5000 साल तक हम बाबा से अलग रहे, और जब बाबा आते हैं तो केवल एक आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नहीं होता है, लेकिन कुंभ का मेला भी होता है साथ में, सच्चा कुंभ होता है कि हम बाबा से तो मिलते ही हैं, लेकिन अपने परिवार से भी मिलते हैं। आज देखो कितने देशों के भाई बहने यहाँ आए हुए हैं, तो इतने देशों के भाई बहने बाबा के निमित्त एक साथ हम समीप आए, तो बाबा के कारण ही वो मिला हुआ है। तो बाबा से मिलन मनाने के लिए कुछ तो हमें पूर्व तैयारी करनी होती है, क्योंकि बाबा की स्थिति तो बहुत ऊंची है। बाबा तो सदा निराकार हैं और हम आत्माएं देह के साथ हैं ना, आत्मा और शरीर का तो सदा साथ है। तो बाबा के साथ हमारी वो फ्रिक्वेंसी मैच करे, जब बाबा आएंगे, बाबा तन का आधार लेते हैं, तो बाबा की स्थिति तो अव्यक्त होती है। लेकिन हमारी स्थिति अगर अव्यक्त नहीं होगी तो फिर वो हमारी फ्रिक्वेंसी बाबा के साथ मैच नहीं करती है। तो बाबा तो एक तरह से हम कहेंगे ज्ञान सूर्य की तरह है, उनके आते ही वो जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और सभी को मिलता है। ऐसे ही बाबा के आते ही बाबा की वो शक्तियों की किरणें, बाबा के प्यार के जो भी दुआएं हैं हम आत्माओं के प्रति, वो सब हमें मिलने लग जाती हैं। लेकिन हम ग्रहण कब कर पाएंगे उसको? कहते ना, सागर में तो बहुत पानी है लेकिन मेरा लोटा कितना बड़ा है या मेरा पात्र कितना बड़ा है, उतना ही हम उससे ग्रहण कर पाते हैं। तो मेरे मन की स्थिति अगर बाबा से मैच करती है तब तो हम पूरा भरपूर हो जाते हैं। हम कहीं भी बैठे हैं हॉल में, क्योंकि सभी को एक स्थान तो नहीं मिलेगा, कुछ आगे बैठेंगे तो कुछ पीछे बैठेंगे। क्या डबल विदेशी भाई बहने होते हैं उनके लिए तो स्थान निश्चित होता है हॉल में, लेकिन ऐसे भी भाई बहने होते हैं जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर बैठे होते हैं, क्योंकि 20,000 का हॉल है और जो टोटल संख्या है वो है 23,000। तो अब 20,000 अंदर बैठ पाएंगे तो 3,000 को तो बाहर बैठना है, तो कुछ बाहर भी बैठेंगे। लेकिन हम कहीं भी बैठे हैं, लेकिन बाबा जब इस धरती पर परम धाम से हम आत्माओं के लिए अवतरित होते हैं तो बाबा के वो वाइब्रेशन समान रूप से सभी आत्माओं तक पहुंचने लगते हैं। सिर्फ हमारा रिसीवर पावरफुल होना चाहिए। ऐसे ही बाबा कई बार कहते हैं जो सब आत्माएं पीएम टीवी से देखती हैं, आजकल तो साइंस के साधन है, तो केवल हॉल में बैठे हुए या शांतिवन में रहे हुए भाई बहने ही बाबा से सम्मुख मिलन नहीं मनाते हैं, लेकिन जो सेवा केंद्रों पर भाई बहने हैं देश विदेश में, वो भी बाबा से सम्मुख मिलन मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते? आप सभी भी जब यहाँ बाबा के टर्न में नहीं होते, अपने अपने सेंटर्स पर होते हैं, तो बाबा लाइव प्रोग्राम देखते हैं। तो इसका मतलब बाबा उन आत्माओं को भी याद भी करते हैं, मुरली में भी बाबा याद करते हैं ना, देश विदेश के बच्चे जो भी अव्यक्त स्थिति में भी बाबा सम्मुख उस सभा को भी देख रहे हैं। केवल सामने वाली सभा को बाबा नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो दूर दूर बाबा के बच्चे बैठे हैं देश विदेश में, उनको भी बाबा देख रहे हैं। तो बाबा उन तक भी अपने वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो कई बार ये देखने में आता है कि जब हम बाबा से सम्मुख मिलन के लिए हॉल में जाते हैं तो सिटिंग के लिए कभी किसी से थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई, कुछ आगे पीछे संगठन होता है ना, तो कभी हो जाता है किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और यदि मेरी बुद्धि उन व्यर्थ संकल्पों में चली गई तो फिर बाबा की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए मैंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया। अगर व्यर्थ के बजाय नेगेटिव संकल्पों में चले गए, कई बार नेगेटिव में भी चले जाते हैं केवल व्यर्थ में नहीं, चलो और कोई टकराव की बात हमारे साथ नहीं हुई लेकिन हम बाबा के सामने बैठे हैं में और इधर उधर की बातें मुझे याद आ रही हैं, कोई मतलब नहीं ना। तो अगर हम हमारे लिए इस पल की कितनी वैल्यू है जिसके लिए हमने 63 जन्मों से पुरुषार्थ किया है, भक्ति तो 63 जन्मों से की है ना, आज हमें बाबा मिला है, तो वो भगवान मेरे सामने बैठा है, तो मुझे अपने मन पर पूरा पहरा लगाना है कि मेरा मन बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना चाहिए बाबा के सिवाय। इस वक्त सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई, और सब बातों से बिल्कुल साक्षी हो जाओ ना, जहां मिले, जैसे मिले, जो मिले ना, मेरे मन पर प्रभाव न आए, ये मुझे ध्यान रखना है ना, ये विशेष बात है। तब हम बाबा से भरपूर हो पाएंगे। और हम देखते हैं बाबा मिलन की विधि अब समय प्रति समय बदलती जाती है। जब साकार बाबा थे तब बाबा हर दिन आते थे, हर दिन साकार मूली चलती थी, हर दिन शिव बाबा की प्रविष्टता होती थी। तब हमें डेट नहीं मिलती थी कि ये डेट्स पर बाबा आएंगे, है ना। और केवल मुरली सुनाने ही शिव बाबा नहीं आते थे, किसी भी टाइम अपने बच्चे से बाबा को मिलना है तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रविष्टता हो जाती थी, है ना। तो सदा ही जैसे अंग संग थे ऐसा कहेंगे, है ना। बाबा परम धाम से बाबा को आने में कितना टाइम लगता है, आप चलो दूर देश से आए हैं तो आपको टाइम लगा होगा, बाबा को ना टाइम लगता है ना खर्चा लगता है। एक सेकंड में ऊपर, एक सेकंड में नीचे, है ना। तो बाबा ऐसे आ जाते थे। फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो गुजार दादी के तन में शिव बाबा का अवतरण शुरू हुआ। तो बाबा के आने का एक दिन छोड़ के एक दिन, लगभग हर दिन नहीं लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन शुरू में इस तरह से बाबा का अवतरण होता था। लेकिन तो भी बहुत ऐसा महसूस करते थे कि हाँ बाबा अभी भी हमारे साथ हैं। अब बाप दादा आते हैं, पहले ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे और दादा हम कहेंगे कि जैसे बाप शिव बाबा है, या कभी 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 बाबा ये भी कहता है कि मैं दादा हूँ और ये बाप है, मतलब दोनों में से कई बार आपस में उनका इतना अच्छा हार्मनी है या अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों को मिलाकर हम बाप दादा कहते हैं। बाप कौन है, दादा कौन है, ये डिपेंड करता है कि हम उनको कब क्या समझते हैं, किस संबंध से दोनों को समझ लेते हैं। तो अब दोनों आते हैं, है ना। अब दादी के तन में बाप और दादा यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की प्रविष्टता होती है, क्योंकि दोनों ही, ब्रह्मा बाबा भी कर्मातीत आत्मा है और बाबा फरिश्ता रूप में अभी भी हम सब आत्माओं की सेवा पर उपस्थित हैं। तो कंबाइंड हैं शिव बाबा के साथ। तो जब आते हैं साकार तन में तो भी कंबाइंड रूप में आते हैं। तो पहले बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे, फिर धीरे धीरे 3 दिन में आना शुरू हुआ, फिर उसके बाद 5 दिन में आना शुरू हुआ, फिर 1 हफ्ते में हुआ, माना बढ़ता गया, फिर 15 दिन में हुआ। 15 दिन में एक बार बाबा की 15 मणि होती थी और अब लगभग 1 महीने में 15 मणि होती है। तो समय अनुसार जैसे तन की अवस्था है उस अनुसार बाबा ने अपनी विधि को बदलना शुरू किया। पहले मुझे याद है जब हम बाबा से मिलते थे तो बाबा एक एक को बुला करके एक एक बाबा के पास स्टेज पर जाते थे। बाबा इतना टाइम देते थे एक एक को, टोली देना, दृष्टि देना, वरदान देना, पर्सनल मिलना, हर एक को एक पर्सनल फीलिंग आती थी कि मैं भगवान से मिली, ऐसा हमें लगता था कि हाँ। लेकिन आज वो समय कितना बदल गया है। अभी तो बाबा की एक दृष्टि मिल जाए हमारे लिए ना, एक झलक, एक सेकंड, क्योंकि पूरे हॉल को बाबा दृष्टि घुमाते हैं, उसमें मेरे ऊपर कितनी देर दृष्टि आने वाली है, कितनी देर आने वाली है, एक सेकंड, 2 सेकंड, मुश्किल से ऐसे होगा कि बाबा की दृष्टि घूमी तो हमारे ऊपर से भी वो गुजरी। तो कितना हमारी एकाग्रता चाहिए उस वो 1 सेकंड की जो नजर से निहाल होने वाली बाबा के प्रति हमारी दृष्टि है। तो हम देखते थे कि बाबा रात रात भर बैठते थे उस समय, और 3 तरह से मिलते थे ग्रुप से। एक तो पूरा का पूरा ग्रुप आता था, जैसे जिस सेंटर का ग्रुप है, मानो आप सब कहाँ से हैं, सारा बर्मा से हैं, सभी बर्मा से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मिक्स है। तो मानो बर्मा का ग्रुप है, तो पहले पूरा बर्मा का ग्रुप आएगा सामने, है ना, पूरे ग्रुप से बाबा अलग से बात करेगा, फिर उसके बाद जो आपके निमित्त टीचर्स हैं, फिर उनसे बाबा बात करेगा, फिर एक एक से मिलेगा, है ना, उसी सामने जो ग्रुप आ गया स्टेज पर, फिर उसके बाद हर एक से एक एक को सामने बुला करके बाबा मिलेगा। इतनी पालना बाबा ने आत्माओं की हुई है ना? लेकिन अब 89 के बाद हमने देखा तो भी बाबा जो है ग्रुप ग्रुप से अलग मिलते थे। आप तो शायद नए हैं, मैं समझती हूँ बर्मा का सेंटर खुले हुए तो बहुत टाइम नहीं हुआ है, कोई होंगे जो बहुत पुराने टाइम के होंगे, 89 से कोई है यहाँ बैठे हैं सभा में? अच्छा, सिर्फ दो ही हैं। हाँ, दो ही बहने हैं सिर्फ, है ना, तो आप लोग सभी बाद में आए हैं, लेकिन उस समय भी जब बाबा मिलते थे तब स्टेज पर मिलना बंद कर दिया था, स्टेज पर ग्रुप नहीं आएगा, स्टेज पर पर्सनल मीटिंग सिर्फ सीनियर्स की होगी, यानी जो दादियां हैं, जो जोन इंचार्जेस हैं, केवल वही बाबा के पास स्टेज पर जाते थे, और बाबा उनको, बाबा की इच्छा होती थी बाबा उनको वरदान देते हैं या नहीं देते हैं, कभी बाबा बोल के वरदान, जैसे अभी भी हमारे वरिष्ठ भाई मिलते हैं, ब्रजमोहन भाई, रमेश भाई और निर्वैर भाई, ना, तो बाबा हमेशा उनसे कुछ ना कुछ बात करते हैं, या हमारी दादियां जब मिलती हैं दादी जानकी से, अभी भी बाबा कुछ ना कुछ से वरदानी बोल बाबा के होते हैं उन आत्माओं के प्रति। तो ऐसा सेटिंग हो गया कि सीनियर्स जो हैं वो बाबा के पास होंगे और बाकी सब भाई बहने सभा में मिलेंगे, लेकिन जो जोन आए हैं वो एक एक जोन सामने आएगा। अब हॉल में बैठे ओम शांति भवन में बाबा का आना होता था, तब तो शांतिवन तो 96 के बाद बना है, आप में से जो नए भाई बहने हैं वो शायद ये सब नहीं जानते होंगे, तो 96 के बाद बना है, तो उस समय बाबा ओम शांति भवन में आते थे, तो जो जोन पीछे बैठे हुए हैं उनको भी बाबा के सामने आने का चांस मिलता था। तो फ्लोर पे, जैसे ये फ्लोर है सामने, तो अगर पांच जोन के भाई बहने आए हैं तो एक एक जोन बाबा के बिल्कुल, क्योंकि जैसे मेडिटेशन हॉल में बहुत नजदीक हैं हम, एक फैमिली फीलिंग आती है, ऐसे ही ओम शांति भवन में भी आप मूली क्लास करते होंगे तो महसूस करते होंगे कि बहुत नजदीक होते हैं, और एक स्टेज के नजदीक बैठते ही एक बहुत क्लोज फीलिंग बाबा की, हम बहुत नजदीक हैं ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसे बाबा सबको बिठाकर हरेक जोन के प्रति भी बाबा कम से कम 15-20 मिनट अपने वरदानी बोल बोलते थे, शिक्षाएं भी देते थे, और साथ में एक वरदान के रूप में कि मेरा इनके प्रति ये वरदान है। फिर धीरे धीरे दादी की तबीयत के अनुसार वो भी जोन वाइज मिलना भी बंद हो गया, और सभा में ही बाबा उठवा लेते थे कि कौन टीचर्स हैं, कौन अलग अलग ग्रुप जैसे भी हैं, कभी माताओं को उठा लेते थे, कभी धर कुमारों को उठा लेते थे। उसके बाद ये सिस्टम होने लगा, जोन वाइज खत्म होकर के ग्रुप, जो ग्रुप हैं उसमें से उनको उठा लिया, विदेशियों को, जैसे आज भी विदेशी भाई बहनों को आपको उठाया जाएगा, इंडियंस के साथ साथ जो सेवा करते हैं, जो सेवाधारी भाई बहने बाबा से मिलते हैं उनको उठाते हैं, साथ साथ में विदेशी भाई। तो आज जो समय है, समय के अनुसार जो विधि बदली है, उसमें कम समय में हमें बाबा से ज्यादा लेना है ना, तो मेरा मन उसके लिए तैयार होना चाहिए, यानी मेरी स्थिति उतनी पावरफुल अभी चाहिए। और हम नहीं कह सकते कि ये विधि भी कब तक चलने वाली है, अचानक कभी भी ये पार्ट भी चेंज हो सकता है, जितना अभी मिल रहा है हम नहीं कह सकते कि नेक्स्ट ईयर भी हमें ऐसे ही बाबा मिलेगा, क्योंकि अब दादी के शरीर की आयु के अनुसार कोई भरोसा नहीं, इसलिए बाबा ने अचानक एवरडी का पार्ट हमें कब से पढ़ा रखा है। तो ये जो हमारे लिए पल होते हैं बाबा के सम्मुख बैठने के, वो बहुत बहुत वैल्यूबल होते हैं। तो जितना हम, मतलब पूरी एकाग्रता से बाबा में समाये हुए होंगे, बाबा की लगन में मगन होंगे, बाबा के लव में लीन होंगे, उतना सारे वरदान हमें महसूस होंगे। हम कई तरह से बाबा से रूरिहान करते हैं, जब हम बाबा के सामने बैठे होते हैं हम कुछ प्रॉमिसेस भी करते हैं बाबा को, हमें पता होता है कि हमारी वीकनेसेस हैं, है ना। तो अब हम बाबा से मिलने आए हैं, भगवान से मिलने आए हैं, तो कुछ भगवान से लेंगे और कुछ हम उसको देंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मन में कोई ना कोई संकल्प होते हैं ना हमारे, तो अगर मेरी पूरी एकाग्रता है और मैंने बाबा को दिया, अब हम बाबा को क्या दे सकते हैं, हम तो कक्पन ही दे सकते हैं, हमारे पास तो और कुछ देने के लिए है ही नहीं, है ना। तो हमने बाबा को कहा कि बाबा ठीक है, आपके श्रीमत अनुसार, जैसे आज की मुरली थी, बिल्कुल आज्ञाकारी बनना है ना, तन मन धन बाबा के श्रीमत प्रमाण हमें यूज करना है। तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, संस्कार में कब छप जाएगा, है ना, यानी वो मेरा सदा कायम कब रहेगा, जब हमारी इतनी एकाग्रता होगी बाबा के सम्मुख। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। ऐसे नहीं कि बाबा कोई जादू कर देते हैं कि ठीक है मैंने बोला बाबा से, तो बाबा के सामने बैठकर मैंने बोल दिया, माना अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब काम कौन करने वाला है, ऐसे हो जाएगा। फिर तो बाबा को सबके लिए करना पड़ेगा ना, ये तो आसान है। तो लेकिन जो मैंने संकल्प किया बाबा के सामने, मैंने हिम्मत रखी और अब मैंने अंडरलाइन किया है उस बात को, तो मुझे बाबा की मदद जरूर मिलने वाली है उस बात को, अगर मैंने रोज स्मृति में ले आया। बाबा कई बार कहते हैं जो वरदान बाबा ने मुरली में दिए हैं, अगर मैंने उसको स्मृति में लाया तो वो जरूर मेरे लिए क्या बोलेंगे, सत वचन महाराज जैसे कहते हैं, मेरे लिए सत्य सिद्ध होने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के टाइम में आत्माएं महसूस करती थी कि बाबा से मिलने आते थे, और उस समय उनको देखते ही बाबा के मुख से उनके लिए जो बोल निकल जाते थे, आज वो फील करते हैं कि सचमुच हम वो बन गए जो बाबा ने हमें कहा। मैं खुद फील करती हूँ, मैं अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मिलने के लिए आई थी, मैंने बताया ना उस समय बाबा तो पर्सनल मिलते थे सभी से, तो ऐसे ही हम पर्सनल मिले, लेकिन मेरे को एक साल हुआ था ज्ञान में, और बहुत गहराई नहीं थी ज्ञान की, मतलब पढ़ते थे, मैं स्टूडेंट थी उस समय, स्टूडेंट लाइफ में थी, कॉलेज में पढ़ती थी। तो एक तो बाबा से मिलने में मेरा जब फर्स्ट मीटिंग था बाबा से, तो मुझे बहुत अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया। पहले से ही सारा दिन, जैसे आज आपको कहा साइलेंस में रहना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है, तो केवल मुख का मौन नहीं लेकिन मन का भी मौन, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि मन भी इधर उधर की बातों में, व्यस्त संकल्पों में नहीं, उसको मन का मौन कहेंगे। तो अव्यक्त स्थिति हमारी तब बनती है, और उसमें भी विशेष आत्मिक स्थिति, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन है, शरीर और परमात्मा का मिलन नहीं है ना, आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो अव्यक्त स्थिति हम आत्मिक स्थिति को कहेंगे या फरिश्ता स्थिति को कहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे खुद को भी आत्मिक स्थिति में रखना है, और जो अन्य भाई बहने हैं उनको भी मुझे आत्मा रूप में ही देखना है, आत्मा भाई भाई की दृष्टि मेरी रहे, ये स्थिति हमारी रहे। तो हमने ये अभ्यास किया था सारा दिन। तो जैसे ही बाबा आए, उस समय तो ओम शांति भवन में हम बाबा से मिले थे, तो बिल्कुल सामने बैठे थे एकदम, जैसे अभी बहने बैठी हैं हमारी, तो बिल्कुल आई कांटेक्ट, पता चलता है कि हाँ हमारा हो रहा है। तो जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी, उसी समय मुझे लगा कि मैं लाइट हो गई हूँ, जैसे लाइट का शरीर बाबा हमें कहते हैं, फील करो कि मैं लाइट के शरीर में हूँ, मैं डबल लाइट हूँ। और मैंने ऐसा भी फील किया कि बाबा भी लाइट में है, यानी जो दादी बैठी हैं, दादी गुजार दादी थे, तो दादी का जो पूरा शरीर है वो भी मुझे लाइट का दिख रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आया उस समय, तो मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं बहुत लंबे टाइम से एकदम एक तक बैठी हूँ, तो मुझे समझ, क्योंकि मुझे उस समय नहीं पता था कि फरिश्ता स्थिति में ऐसे हम डबल लाइट फील करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि जैसे ही बाबा ने मुझे दृष्टि दी तो क्यों ऐसे लाइट लाइट हो गया। फिर मैंने सोचा, फिर बाबा ने जैसे ही दूसरे को दृष्टि देना शुरू किया तो मैं नॉर्मल हो गई। तो मैंने सोचा अब जब बाबा दोबारा मुझे दृष्टि देंगे तो मैं बिल्कुल अटेंशन रखूंगी, है ना, अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि मैं मेरा कुछ तो मैंने ध्यान रखा। और फिर बाबा तो दोबारा सभा में दृष्टि देते हैं, तो फिर बाबा ने जब दृष्टि दोबारा दी मुझे तो फिर मुझे वही लाइट का एक अनुभव हुआ, एकदम मैं लाइट में चली गई और बहुत पावरफुल, एकदम जैसे सकाश वाली बात होती है ना, एकदम जैसे करंट बाबा से मिली। और फिर मैंने समझ लिया, क्योंकि मेरा संकल्प चल गया ना, तो भगवान भी हमारे संकल्प को कैच कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर किसी के संकल्प को कैच कर सकते हैं तो बाबा भी तो कैच कर सकते हैं। तो बाबा ने मुझे तुरंत मतलब वो टचिंग दी कि ये योग का बाबा से जो मेरा संबंध है उसकी वजह से मुझे वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो रहा है। तो वो छाप पड़ गई मेरे ऊपर। और फिर मैंने ये देखा कि जब मैं स्टेज पर बाबा से मिलने के लिए गई तो बाबा ने मुझे कुछ वरदानी बोल कहे, बाबा ने मुझे कहा कि श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाली हो। पहले मेरे से पूछा कुमारी माना क्या, तो मुझे, मैं नई थी, मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, तो मैं देखने लग गई क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आया मैं क्या जवाब दूं, तो मैं ऐसे ही खड़ी थी। तो बाबा ने कहा कुमारी माना 100 ब्राह्मण से उत्तम श्रेष्ठ। ये भाषा तो मुझे समझ में ही नहीं आई मतलब कैसे क्या, तो मैं सिर्फ चुपचाप सुन लिया। फिर बाबा ने ये बात कही कि श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाली हो, सदा समर्थ हो। कुछ भी नहीं समझ में आया तो बाबा, लेकिन जो बाबा ने जिस प्यार से, जिस अपनेपन से, माना वो दृष्टि से हमें पता चलता है ना, आज भी देखो बाबा की जब हमें दृष्टि मिलती है तो हमें क्या अनुभव होता है कि बाबा का हमारे प्रति बहुत प्यार है, जैसे प्यार का सागर है वो हमसे मिल रहा है। तो ऐसी फीलिंग थी कि जिसको हम, मैंने शायद बहुत ढूंढा है और वो मेरे सामने अभी बैठा है। एक टचिंग जैसे अंदर में वो फीलिंग आई और वो बाबा का इतना प्यार अनुभव किया, शायद दुनिया में कोई आत्मा ऐसा प्यार मुझे नहीं दे सकती, ये भी मुझे फीलिंग आई। शब्द सब ऊपर से निकल गए है ना, लेकिन जो बाबा की वो वाइब्रेशंस थे, जो फीलिंग्स थी, उसको मैंने कैच किया। और उस समय मेरा निश्चय थोड़ा ऐसे मैं कहूंगी 50-50, यानी मैं पूरे निश्चय से बाबा से मिलने आई थी। मैं साइंस के स्टूडेंट थी तो थोड़ा तो साइंस वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन माइंड होते हैं तो एकदम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा नहीं होता है। तो मैं 50-50 थी, लेकिन जब मुझे ये अनुभव हुआ बाबा से, तीन चीजें मुझे बहुत स्ट्रांगली अनुभव हुई। एक तो ये दृष्टि वाला जो अव्यक्त स्थिति का अनुभव, दूसरा मुझे अनुभव हुआ कि जो मेरे मन में प्रश्न थे वो बाबा ने मुरली में आंसर कर दिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने तो किसी से बात नहीं की यहाँ, क्योंकि मैं कॉलेज से आई थी और एक दिन की छुट्टी लेकर आई थी, तो मैं एक ही दिन के लिए आई थी, मुझे किसी से मिलने का टाइम ही नहीं था। तो सिर्फ बाबा मिलन वाले दिन में पहुंची थी, तो मैंने कहा मैंने तो यहाँ किसी से कोई बात नहीं की, तो मेरे मन की बात कैसे समझ ली, है ना। तो इसका मतलब भगवान हमको जानता है और उसने मेरे सवालों का जवाब बिना पूछे मुझे दिया है। और तीसरा मुझे ये जो स्टेज वाला अनुभव हुआ, ये तीन बातों ने मेरे निश्चय को मजबूत कर दिया। फिर मैंने बहन से पूछा कि बाबा ने मुझे ऐसे कहा तो ये इसका क्या मतलब है। तो बहन जी ने कहा कि देखो भगवान आपके भविष्य को जानता है, वो त्रिकालदर्शी है, आप तो अपने वर्तमान को देख रही हो ना, तो वर्तमान, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था उस समय मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी क्योंकि मैं तो कॉलेज में पढ़ रही थी और क्या करूंगी मुझे ही पता नहीं था। तो मतलब बाबा ने मुझे उस समय वो बात कह दी। तो भगवान मतलब हमारे तीनों कालों को जानता है, तो उसने मुझे ये समझाया और अच्छे से समझाया। तो उसने कहा देखो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्योंकि भगवान का वरदान है ना, ये ईश्वर के बोल है, तो आप रोज एक बार याद करो कि बाबा ने मुझे क्या कहा, बस। और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, भले आप अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे ही करती थी। फिर धीरे धीरे बाबा की मुरली सुनते सुनते कब वो लगन, कब वो अनुभव बढ़ते गए और हम धीरे धीरे समर्पित होने की स्थिति तक, है ना, मेरा फाइनल होते होते तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये ब्रह्मा कुमारी लाइफ ही जीना है। तो एक सम्मुख मिलन का इतना पावरफुल अनुभव जिसने पूरे जीवन की दिशा को बदल दिया। तो ऐसा अनुभव हम बाबा के सामने करें, जब हम बाबा के सामने बैठते हैं कि आज तक मेरे जो संस्कार हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, या जो भी हमारी कमियां हैं, जो जिसके लिए हमें विशेष शक्ति चाहिए बाबा से, वो हम बाबा के सामने संकल्प करें, तो जरूर बाबा की मदद हमें मिलती है और हम वो कर पाते हैं, हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट वो हो जाता है। तो मैं जैसे कह रही थी कि कैसे वो विधि बदलती गई, आज जो समय है उस अनुसार हम देखते हैं, जब पहले हम बाबा का आह्वान करते थे तब बाबा के आह्वान के समय हम दादियां आती हैं, गुलजार दादी बैठते हैं, बाबा के सामने भोग रखा जाता है और गीत बजाते हैं, तो दादी बिल्कुल ऐसे ही बैठती हैं जैसे कि योग लगाते हैं और भोग लगाते हैं, दादी की आंखें खुली होती हैं, दादी सबको दृष्टि देते हैं, तो हमें समझ में आता है दादी की दृष्टि से कि दादी हैं, माना वो एक चेंज हमें पता चलता है कि कब बाबा की पधरामनी हुई है और कब बाबा की पधरामनी नहीं है। तो बहुत स्पष्ट समझ में आता था पहले कि दादी आकर बैठी हैं। और फिर दो गीत बजते बजते जो हमारे आह्वान के गीत हैं वो दादी ट्रांस में चले जाते थे, तो दादी जब ट्रांस में जाती थी तो दादी की आंखें बंद हो जाती थी और कहेंगे कि थोड़ा एक बॉडी में शेकिंग भी होता था, जो पुराने भाई बहने हैं वो जानते हैं कि ऐसा फील होता था कि दादी ट्रांस में गई हैं। और कुछ समय तक दादी की आंखें बंद रहती थी, तब तक एक गीत और बजता था और उसके बाद जब आंखें खुली माना अब शिव बाबा हमारे सामने हैं, तो अब दृष्टि से हम समझ जाते हैं। आंखें खुली तो बाबा की दृष्टि में जो एक्सप्रेशन है, बाबा की दृष्टि में जो पावर है, वो हमें डिफरेंस समझाता है कि अब दादी नहीं है, लेकिन अब पता चलता है ना, वो किसी को बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती, तो हम क्लियरली, और वॉइस भी चेंज हो जाती है जब दादी मुरली, जब बाबा मुरली चलाने लगते हैं तो वॉइस भी अव्यक्त आवाज बाबा की है, जो विस्परिंग जैसी वॉइस होती है और बहुत स्लो बाबा बोलते हैं। तो यहां भी जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोगों को फ्लो में सुनने की आदत है और फ्लो के बीच में अगर गैप आएगा तो मार्जिन मिल जाती है माया को बीच में हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने की, है ना। तो थोड़ा तो समय तो हम ध्यान से सुनते हैं और फिर धीरे धीरे ट्रैक से अलग होने लगते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो मैं एक बात बता रही थी कि हम अभी तक इस तरह से मिल रहे थे, लेकिन अब ये विधि भी चेंज हुई है। आपने लास्ट ईयर से नोट किया होगा कि अब दादी की आंखें बंद नहीं होती हैं और दादी को शेकिंग भी नहीं होती है जब दादी ट्रांस में जाती है, यानी अब दादी का और बाबा का डिफरेंस नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेज है वो बाप समान स्टेज है दादी की, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, तो डिफरेंस नहीं पता चलता था कब शिव बाबा आ गए और कब ब्रह्मा बाबा है। मुरली में भी कब ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया कब शिव बाबा ने बोला, हम डिफरेंस कर सकते हैं। दोनों ही बोलते हैं, साकार मुरली में दोनों ही बोलते हैं। तो साकार के समय भी ऐसा ही था और नॉर्मल वॉइस थी बाबा की, जो वॉइस थी वो ऐसी अव्यक्त वाली आवाज नहीं थी जो हम विस्परिंग आवाज इतने सालों तक अव्यक्त बाप दादा की सुनते रहे। तो अभी भी ऐसा हो जाता है कई मुरली में, सुना होगा आपने लास्ट ईयर भी एक दो मुरली जो है वो फुल वॉइस में चली। तो फिर कई लोगों को संशय आता है, संशय आता है कि क्या सचमुच बाबा आया या दादी ही हमें सुना रही है। कुछ लोगों ने तो ये सवाल भी पूछे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बाबा आया या नहीं आया, आया। तो ये बाबा की जो हमें दृष्टि मिलती है, जो बाबा की फेशियल एक्सप्रेशन होती है, लुक जिसे हम कहेंगे ना, लुक से हमें समझ में आ जाता है कि अव्यक्त बाप दादा इस तन में है। तो आवाज की बात नहीं है। अब दादी की स्थिति लगभग कर्मातीत स्थिति है। आप देखेंगे शरीर से दादी कमजोर है, अभी अभी भी दादी एक महीना पहले काफी बीमार रहे हैं, अस्पताल में भर्ती रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बाबा का पार्ट तो सिर्फ इतने बच्चे बाबा के आए हैं तो दादी भी क्योंकि समर्पित हैं, तन तो बाबा का ही है तो चाहे तन चलता है या नहीं चलता है वो जरूर आकर के स्टेज पर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि बाबा इस तन के द्वारा अपने बच्चों से मिलें। पर अगर शरीर साथ नहीं देता है, मानो कई बार ऐसे जो शरीर की वीकनेस है, ये अब हम समझते हैं इस बात को, तो बाबा उसी अनुसार उस शरीर से पार्ट बजाते हैं क्योंकि जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा वैसा ही तो प्ले कर पाएंगे ना, है ना। मानो अगर कोई ये हारमोनियम का इंस्ट्रूमेंट दिया जाए म्यूजिशियन को तो वो क्या प्ले करेगा, हारमोनियम ही प्ले करेगा ना। गिटार तो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि हारमोनियम ही है उसके सामने, और अगर गिटार दिया जाएगा या सितार दिया जाएगा तो क्या प्ले करेंगे, कितना भी अच्छा म्यूजिशियन क्यों ना हो लेकिन उसको जैसा इंस्ट्रूमेंट मिला है वैसा ही म्यूजिक वो प्ले कर पाएगा, ऐसे ही कहेंगे ना। तो बाबा के लिए भी अभी जो तन है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड तो है ना। हम कहेंगे कि शारीरिक क्षमता से भी और प्लस मानसिक क्षमता से भी दोनों ही तरह से जो है अभी दादी की जो स्टेज है वो हम कहेंगे पहले से, पहले जैसी दादी की स्टेज थी उस तरह से स्थिति के अनुसार, मैं नहीं कह रही हूँ स्थिति तो दादी की कर्मातीत स्थिति है, लेकिन प्रकृति के जो पांच तत्वों का हिसाब किताब है उस अनुसार जो है थोड़ा सा भी उसमें फर्क है। तो फिर कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब बाबा मुरली चलाते हैं तो मुरली में कई बार ना कोई सेंटेंसेस होते हैं जो एकदम परफेक्टली सेंटेंस नहीं बन पाया, पर क्या भाव बाबा कहना चाहते हैं उसको फिर से बाबा रिपीट करके हमें बता देते हैं। तो जितना हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होगी हमें डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक बार मन आपका डाउट में चला गया ना फिर बाबा से जो आपको वाइब्रेशंस अपने अंदर समाने चाहिए वो आप नहीं समा पाएंगे क्योंकि ब्लॉक कर दिया आपने ना, अपनी इंटेलेक्ट को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो मुझे अपनी इंटेलेक्ट को ब्लॉक नहीं करना है, लेकिन भगवान सिर्फ हमें तन से तो नहीं मिलते हैं, वो तो एक बहुत शॉर्ट मीटिंग है हमारी बाबा से, एक दो घंटे की एक साकार मीटिंग है, लेकिन हमेशा हमारा मिलन कैसे होता है बाबा के साथ, हाँ कैसे होता है, हाँ बाबा तो सदा हमारे साथ है ना, हमारा अव्यक्त मिलन बाबा के साथ तो सदा ही है। तो हमारा जो सही मिलन है बाबा के साथ वो तो अव्यक्त मिलन है ना। तो अब इस समय भी हम उस अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के और बाबा की अव्यक्ति जो हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं उन वाइब्रेशंस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। बाबा क्या सुना रहे हैं, ज्ञान तो भगवान हमें पूरा दे चुका है, अब ज्ञान देने का बाबा को कुछ रहा नहीं है। इतने सालों से साकार मुरली चली, अव्यक्त मुरली चली, फिर रिवाइज भी हो रही है ना, ज्ञान तो सब मिल गया है, और न सिर्फ मिला है लेकिन मक्खन भी निकल चुका है उसका। आज हम सब क्या खा रहे हैं, आने वाले जो हैं उन्होंने तो बहुत छाछ को विलोया है, उन्होंने बहुत अपने जीव मतलब कहेंगे अपने टाइम में बहुत संघर्ष भी किया है, बहुत विघ्नों का सामना भी किया है, लेकिन हमें आज सब कुछ बहुत सहज। तो जो हमें आज मिला है ज्ञान इतना रिफाइन, और भी जो आज हमारे भाई बहने हैं वो उसको और भी रिफाइन करके हमें देते हैं, जो भी क्लासेस सुनते हैं हम अपने वरिष्ठ भाई बहनों की, आज भी दादी जानकी भी हमें क्लास कराते हैं और दादियां भी हमें क्लास कराते हैं जो भी हैं, तो ज्ञान तो बाबा पूरा हमें दे चुका है। तो अभी ज्ञान देने बाबा नहीं आता है, बाबा का अभी जो पार्ट है वो सतगुरु का पार्ट है, टीचर का पार्ट बाबा का पूरा हो गया ऐसे कहेंगे। सतगुरु का पार्ट है माना कुछ वरदानी बोल, बाबा बच्चों से मिलने आए तो बाबा ने कही, हो सकता है कि इस साल हम कुछ सुने बाबा से, नेक्स्ट ईयर से सिर्फ दृष्टि का ही पार्ट हो जाए, बोलने का पार्ट भी बाबा का समाप्त हो सकता है। मैं नहीं कहती हो जाएगा क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से हम आज सिचुएशंस देखते हैं उस हिसाब से समय अनुसार ऐसा हो सकता है, क्योंकि संख्या बढ़ती जाती है और फिर दादी की तबीयत भी उस हिसाब से, तो बाबा का पार्ट चेंज हो सकता है। तो बाबा हमें सिर्फ समझो एक पेज डेढ़ पेज जो है वो कुछ सुनाते हैं, थोड़ी बहुत उसमें कहीं कुछ थोड़ी शिक्षा होती है, नहीं तो बाबा हमेशा वाह वाह का पाठ, बाबा के दिल में कौन और बच्चों के दिल में कौन। तो इतना बस प्यार में ही बाबा हमें बिल्कुल जैसे प्यार के सागर में हम समाये हुए हैं, इस तरह का अनुभव ही बाबा हमें कराते हैं। तो हमें मैं समझती हूँ कि जो बाबा मिलन हमारा वर्तमान में है उसको उस तरह से हम समझ करके और फिर पूरा पूरा हम उसे उसका लाभ लें। आप लोगों को कोई प्रश्न हो इस बारे में, बाबा मिलन के बारे में, तो पूछ सकते हैं। मतलब मुझे जो इस पर चिंतन चला वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। किसी को कोई प्रश्न? सब संतुष्ट आत्माएं हैं हा? जो पहली बार मिलने वाले हैं उनको कोई प्रश्न नहीं? हाँ जी, बता दिया तो ठीक है, हम फिर कमेंट्री से योग करते हैं। ले चले अपने आप को बाबा के पास, इस साकार दुनिया से अपने देह और देह के संबंधों से नियारा होकर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में अव्यक्त फरिश्ता रूप में बाबा के सम्मुख हूं। बाप दादा भी अव्यक्त फरिश्ता रूप में मुझ आत्मा का बहुत स्नेह से आह्वान कर रहे हैं। मैं बाबा के एकदम समीप बाबा के स्नेह में स्वयं को समाया हुआ महसूस कर रही हूं। बाबा के मस्तक से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। का दिन इस ड्रामा में मुझ आत्मा के लिए बहुत विशेष और प्यारा दिन है, जब बाबा मैं आपसे साकार वतन में सम्मुख मिलन मनाऊंगी। इस दिन का मुझे कितने जन्मों से इंतजार रहा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की अद्भुत वेला मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है, अनमोल है। मैं इन पलों का पूरा पूरा लाभ उठाऊंगी। बाबा मेरे सर्व संबंध से साथी हैं। मेरे प्रियतम हैं। मेरे पिता हैं, शिक्षक हैं, वही प्यार बाबा से मुझे साकार में अनुभव करना है। बाबा सदा मेरे साथ हैं, बाबा के उन वरदानों को मैं स्वयं में समा रही हूं। मुझ आत्मा की सतु प्रधान और पावन स्थिति का मैं आत्मा बाबा की याद से अनुभव करती हूँ। ये मिलन मुझे विशेष रूप से मेरी सतो प्रधान स्थिति में ले जाने वाला और बाबा के संबंध में और समीपता का अनुभव कराने वाला रहेगा। जो भी बाबा मुझे प्रेरणा देंगे, जो बाबा के श्रीमद मुझ आत्मा के प्रति रहेगी, मैं उस श्रीमत को दृढ़ता से पालन करूंगी। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्यवान ही नहीं, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। स्वयं भगवान मुझसे अपना परम धाम छोड़कर मिलन मनाने के लिए आते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, हम आत्माएं हैं जिन्हें ये भाग्य प्राप्त हुआ है। ये नशा और खुशी मुझ आत्मा को सदा है। भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया है। और अपने सर्व खजानों से मुझे संपन्न बना दिया है। मुझे जन्म जन्मांतर के लिए तन मन धन और संबंध सर्व भाग्य ईश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। मैं बाबा के कार्य में, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा की सहयोगी पूजा भी हूँ। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व के सभी आत्माओं के प्रति मेरी शुभ भावना है। कि जैसे मुझे परमात्मा से सर्व भाग्य प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही विश्व के सभी आत्माओं को, चाहे वो किसी भी धर्म की है, देश की है, भाषा की है, उसे भी परमात्मा से अधिकार मिले। हम बाबा के बहुत मीठे सिकिल थे बच्चे हैं, जिसे स्वयं भगवान ने ढूंढा है। हम ढूंढ रहे थे हमें बाबा मिला नहीं, लेकिन बाबा ने खुद ही हमें ढूंढा है, अपना बनाया है। हम शिव की शक्तियां और पांडव हैं। महसूस करें कि शिव बाबा ज्ञान सूर्य की पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा पर एक छत्र छाया की तरह प्रकाश के रूप में है और कुछ देर उसी प्रकाश में स्वयं को महसूस करें।